पृष्ठ संख्या 229, अध्याय 13। अध्याय का शीर्षक है ख संकल्प स्वतंत्रता की समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ फ्री विल। शीर्षक है विषय प्रवेश। धर्म दर्शन में ईश्वरवादियों के लिए बहुत बड़ी समस्या यह है कि यदि ईश्वर ही सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक एवं सर्वज्ञ है और वही सृष्टिकर्ता है तो विश्व के समस्त कार्यों के लिए एकमात्र वही उत्तरदायी है। प्रश्न होता है कि क्या मनुष्य, जो ईश्वर की ही सृष्टि है, अपनी इच्छा से कोई कार्य नहीं करता? वैसे मनुष्य एक आध्यात्मिक प्राणी है, वह आत्मचेतन तथा अपने कार्यों का स्वयं निर्णय कर सकता है। कोई बाह्य शक्ति उसके कर्मों का निर्णय नहीं करती, वह अपना आत्म विकास स्वनिर्णित साधनों से कर सकता है। परंतु इसके विषय में विचारक एक मत नहीं है। विभिन्न युगों के विचारकों ने संकल्प की स्वतंत्रता के विषय में बहुत बड़ा विवाद खड़ा किया है। इस संबंध में एक मत है जिसे यांत्रिक नियतिवाद कहा जाता है, या प्रोफेसर जेम्स के शब्दों में कठोर नियतिवाद कहते हैं। दूसरा मत अनियतिवाद या संकल्प स्वतंत्रवाद है, जो नियतिवाद का विरोधी है, परंतु परिस्थिति विशेष के संबंध में मानव चुनाव की प्रत्येक क्रिया में अपने स्वभाव या चरित्र को ही प्रकट करता है। इस प्रकार कर्म चरित्र से ही निर्धारित होता है। मुक्त संभावनाओं का अस्तित्व नहीं रहता। मनुष्य ऐसे स्वतंत्र संकल्प की आशा नहीं कर सकता जो किसी भी प्रकार परतंत्र न हो। संकल्प की स्वतंत्रता इसी अर्थ में है कि मनुष्य किसी बाह्य शक्ति के कारण संकल्प नहीं करता, बल्कि अपने से ही अपने कर्म का चुनाव करता है। दूसरे शब्दों में मनुष्य को वही कर्म करना है जिसे उसका चरित्र या स्वभाव निश्चित करे। इसमें मनुष्य की स्वतंत्रता का हनन नहीं होता। यह अनियतवाद है। यहाँ संक्षेप में इन दोनों सिद्धांतों की मीमांसा आवश्यक है, जिसमें बिंदु अ है कठोर नियतवाद। कठोर नियतवाद में मानव की स्वतंत्र संकल्प शक्ति का निषेध किया जाता है। नियतिवादी अपने पक्ष में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत करते हैं। इसमें पहला है मनोवैज्ञानिक तर्क। इसके अंतर्गत बिंदु क है जब मनुष्य के मन में अनेक इच्छाएं होती हैं तो उनमें से जो इच्छा प्रबल होती है उसी से संकल्प और उससे निकलने वाले कर्म का निर्णय होता है। मनुष्य संकल्प के निर्णय में स्वतंत्र नहीं है। बिंदु ख है मानव स्वभाव की भविष्यवाणी। मनुष्य अपनी पूर्वगामी परिस्थितियों से कर्म करता है। यदि उसको पहले की परिस्थिति का ज्ञान हो जाए तो इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है कि वह क्या करेगा। अतः मनुष्य संकल्प के विषय में स्वतंत्र नहीं है। पृष्ठ संख्या 230। बिंदु दूसरा है दार्शनिक तर्क। इसमें बिंदु क है कार्य कारण का नियम। इस नियम के अनुसार कोई भी कार्य बिना किसी कारण के संभव नहीं है। किसी भी भौतिक या मानसिक कार्य का कारण अवश्य होना चाहिए। इस दृष्टि से संकल्प की स्वतंत्रता संभव नहीं है। बिंदु ख है शक्ति संरक्षणता का नियम। इस नियम के अनुसार विश्व में शक्ति की मात्रा समान रहती है, परंतु संकल्प की स्वतंत्रता से हम एक नवीन शक्ति की सृष्टि करते हैं, अर्थात शक्ति की मात्रा में वृद्धि करते हैं, जो इस नियम के अनुसार संभव ही नहीं है। अतः संकल्प की स्वतंत्रता नहीं है। बिंदु ग है अद्वैतवाद या सर्वेश्वरवाद। यदि ईश्वर ही सब कुछ है और जगत केवल माया मात्र है तो मानव की संकल्प स्वतंत्रता का क्या अर्थ? सर्वेश्वरवाद के अनुसार व्यक्ति ईश्वर का ही एक रूप माना जाता है। जगत की समस्त घटनाएं ईश्वर द्वारा ही घटित होती हैं। फिर संकल्प स्वतंत्रता का यहाँ कोई स्थान ही कैसे संभव रहे? अब बिंदु तीसरा है धार्मिक तर्क। ईश्वरवादी यह तर्क देते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उसे विश्व की सब वस्तुओं और घटनाओं का पूर्व ज्ञान है, वह मनुष्य के भावी कर्म का भी ज्ञान रखता है। इससे सिद्ध होता है कि ईश्वर ने ही मनुष्य के समस्त कर्मों का पूर्व निर्धारण कर दिया है। फिर मनुष्य को अपने स्वतंत्र संकल्प शक्ति से कार्य करने का प्रश्न ही नहीं होता। अतः स्वतंत्र संकल्प संभव ही नहीं है। अगला शीर्षक है बिंदु ब, संकल्प स्वतंत्रवाद या अनियतिवाद। नियतिवाद के विरोध में दूसरा मत अनियतिवाद है। यह नियतिवाद का खंडन करता है। इसके अनुसार मानव आत्मचेतन और विवेकशील प्राणी है और वह अपनी विवेक बुद्धि से ही अपने संकल्प का चुनाव करता है। यह मत अपने पक्ष में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत करता है। इसमें पहला है आत्मचेतना का प्रमाण। मनुष्य आत्मचेतन है। यह स्वचेतन होने के कारण अपने मंगल और अमंगलकारी कार्यों से अनभिज्ञ नहीं रहता। इसीलिए वह बाह्य या पूर्वगामी कारणों के नियंत्रण में किसी कार्य को संपादित करने के लिए नहीं चुनता। उसकी स्वतंत्रता विचार और संकल्प में देखी जा सकती है। वह स्वतंत्र होकर ही अपने कार्यों में प्रवृत्त होता है। दूसरा है नैतिक चेतना का प्रमाण। इसके पक्ष में कांट का मत सर्वप्रसिद्ध है। कांट नैतिकता के लिए संकल्प स्वातंत्र को सिद्धांत के रूप में स्वीकार करते हैं। उनका कहना है कि तुम्हें करना चाहिए, अतः तुम कर सकते हो। चाहिए से ही प्रकट होता है कि मनुष्य अपने कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में स्वतंत्र है। वह चाहे नैतिक और अनैतिक कार्यों में से किसी को चुन सकता है। फिर यह भी है कि यदि मनुष्य में संकल्प की स्वतंत्रता न होती तो कर्तव्य, उत्तरदायित्व, पाप, पुण्य, न्याय, अन्याय, धर्म और अधर्म का कोई अर्थ ही न होता। अतः मनुष्य में संकल्प स्वातंत्र स्वीकार किया जा सकता है। तीसरा है विश्व की व्याख्या जड़वादी सिद्धांत से नहीं की जा सकती। विश्व की जड़वादी व्याख्या अमान्य प्रतीत होती है, क्योंकि जड़ परमाणु स्वयं अचेतन होने के कारण चेतन जगत को परिचालित नहीं कर सकते। मन को मस्तिष्क का उपविकार नहीं कहा जा सकता। मन में चेतना शक्ति होती है और इसी से संकल्प में स्वतंत्रता की धारणा को भी स्वीकार किया जा सकता है। पृष्ठ संख्या 231, बिंदु चौथा है ईश्वर का पूर्व ज्ञान। ईश्वर का पूर्व ज्ञान संकल्प स्वातंत्र के विरोध में न जाकर उसका समर्थन ही करता है, क्योंकि पूर्व ज्ञान का अर्थ पूर्व निर्धारण नहीं कहा जा सकता। ईश्वर मानव के कर्मों का ज्ञान रखता है, न कि उसके कर्मों का निर्धारण करता है। मनुष्य अपनी ही इच्छा से कर्म करता है। बिंदु पांचवा है शक्ति संरक्षण। संकल्प की स्वतंत्रता का खंडन शक्ति संरक्षण के नियम से भी नहीं होता, क्योंकि संकल्प की स्वतंत्रता से शरीर में नवीन शक्ति नहीं उत्पन्न होती, वरन शरीर की शक्ति की दिशा बदल जाती है। छठवां है कार्य कारण। कार्य कारण का नियम भी संकल्प शक्ति का विरोधी नहीं कहा जा सकता। संकल्प शक्ति अकारण नहीं उत्पन्न होती, इसकी उत्पत्ति का कारण आत्मा है। आत्मा स्वतंत्र है कि शुभ और अशुभ में से किसे चुने। बिंदु सातवां है इच्छाओं की प्रबलता। यह नहीं कहा जा सकता कि हमारे कर्म अनेक इच्छाओं के अंतर्द्वंद के फल स्वरूप प्रबलतम इच्छा के कारण ही निर्धारित होते हैं, क्योंकि प्रबलतम इच्छा भी स्वयं हमारी आत्मा पर निर्भर है। जिसे आत्मा चुनता है वही प्रबलतम इच्छा होती है। इससे सिद्ध होता है कि मानव में संकल्प की स्वतंत्रता है। बिंदु आठवां है विश्व में आध्यात्मिकता। विश्व में व्याप्त आध्यात्मिकता से भी संकल्प स्वतंत्रता को समर्थन मिलता है। इसके अनुसार विश्व में ईश्वर और जीव सत्य है। संपूर्ण विश्व ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है। इस अर्थ में मनुष्य ईश्वर का ही अंश है और ईश्वर की संकल्प स्वतंत्रता में उसका भी भाग है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि मनुष्य की स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं बल्कि सापेक्ष है। मनुष्य किसी सीमा तक ही स्वतंत्र है। इस रूप में मानव में स्वतंत्र संकल्प शक्ति को माना जा सकता है। अगला शीर्षक है नियतिवाद और अनियतिवाद दोनों एकांगी हैं। संकल्प स्वातंत्र के विषय में उठाए गए दोनों विवाद एकांगी प्रतीत होते हैं, क्योंकि मनुष्य आत्मचेतन प्राणी है। वह केवल बाह्य होकर किसी कार्य को करने का निर्णय नहीं करता। अतः नियतिवाद के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर अनियतिवाद यद्यपि मनुष्य की स्वतंत्र संकल्प शक्ति को स्वीकार तो अवश्य करता है, परंतु इसके अनुसार यह कहा जाता है कि मनुष्य कई विकल्पों में से किसी एक को उदासीनता पूर्वक चुन लेता है। अनियतिवाद का यह मत स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य के बौद्धिक और आत्मचेतन युक्त स्वभाव के बिल्कुल प्रतिकूल है। मनुष्य कई विकल्पों में से किसी कार्य को उदासीनता पूर्वक चाहे जिसको नहीं चुनता। मनुष्य स्वतंत्र इस अर्थ में है कि वह शुभ के विचार के अनुकूल अपने संकल्प को निश्चित करता है। मनुष्य आत्मा के ही द्वारा शुभ साधन के उद्देश्य से अपने कर्म को चुनता है। इस अर्थ में संकल्प स्वातंत्र्य का अर्थ आत्मनियतवाद है, न कि अनियतवाद। अब शीर्षक है आत्मनियतवाद। इस सिद्धांत को जेम्स ने कोमल नियतवाद के नाम से अभिहित किया है। इनके अनुसार आत्मा अपने संकल्पों का निर्णय कर सकता है। मनुष्य बहुत से विकल्पों में से किसी एक का चुनाव बिना किसी बाह्य प्रेरणा या दबाव के करने में स्वतंत्र है। वह आत्मचेतन है। उसे स्वयं अपने कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान रहता है और इस आधार पर अपनी स्वचेतन से ही संकल्प करता है। पृष्ठ संख्या 232। परंतु कोमल नियतवाद में भी एक शर्त है कि मनुष्य परिस्थिति विशेष के संबंध में चुनाव को प्रत्येक क्रिया में अपने स्वभाव या चरित्र को अवश्य प्रकट करता है। इस प्रकार कर्म चरित्र से भी निर्धारित होते हैं। इसमें मुक्त संभावनाओं का अस्तित्व नहीं रहता। इस प्रकार मनुष्य ऐसे स्वतंत्र संकल्प की आशा नहीं कर सकता जो किसी भी प्रकार परतंत्र न हो। संकल्प की स्वतंत्रता इसी अर्थ में है कि मनुष्य बाह्य शक्ति के कारण संकल्प नहीं करता, बल्कि अपने से ही अपने कर्म का चुनाव करता है। दूसरे शब्दों में मनुष्य वही कर्म करता है जिसे उसका चरित्र या स्वभाव निश्चित करे। इसमें मनुष्य की स्वतंत्रता का हनन नहीं होता। अब शीर्षक है आलोचना। इस मत की भी प्रोफेसर गैलवे ने कई रूपों में आलोचना की है। इसमें पहला है, केवल चरित्र के अनुरूप ही कार्य करना कोई स्वतंत्रता नहीं है। एक मनुष्य जो अपना स्वामी स्वयं है, उसकी स्वतंत्रता में और उस मनुष्य की स्वतंत्रता में बड़ा अंतर है, जो अपनी वासनाओं और बुरी आदतों के आधार पर काम करता है या उनके वश में रहता है। दूसरा है, यदि इस सिद्धांत के अनुसार यह मान लिया जाए कि मनुष्य अपने चरित्र के ही अनुकूल कार्य करता है, मुक्त संभावनाओं का अस्तित्व नहीं है, तो पश्चाताप और खेद प्रकट करने की भावना की व्याख्या कैसे हो सकती है। तीसरा है, आदत जन्य क्रियाओं से स्वतंत्रता प्रकट नहीं होती। यदि चरित्र ही व्यवहार को निश्चित करता है तो व्यवहार निरर्थक होता है। जब तक आत्मा अपनी इच्छा से किसी व्यवहार को निर्धारित नहीं करता, तब तक उस व्यवहार का कोई अर्थ नहीं है और आत्मा से अलग चरित्र अव्यवहार्य है। चौथा है, यदि संभावनाओं और आकस्मिकता को स्वीकार नहीं किया जाता तो प्रगति का कोई अर्थ नहीं होता। मनुष्य विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रगति और विकास करता है, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। शीर्षक है निष्कर्ष। अतः इस विवाद का निष्कर्ष यह निकाला जा सकता है कि स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य उदासीनता पूर्वक चाहे जिस विकल्प को चुने। स्वतंत्रता का अर्थ है मूल्यों को दृष्टि में रखकर विकल्प को चुनना। आत्मा परम शुभ को दृष्टि में रखकर कर्म का चुनाव करता है। स्वतंत्रता आत्मचेतना से युक्त व्यक्ति में ही होती है। यह स्वतंत्रता आध्यात्मिक विकास को दृष्टि में रखती है। सारांश में, पूर्ण आत्मनियतिवाद शुभेच्छा के राज्य से ही संबंधित है। यहाँ हम जेम्स के कोमल नियतिवाद की विवेचना से इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि नियतिवाद तथा अनियतिवाद एकांगी है। आत्मनियतवाद ही वास्तविक संकल्प की स्वतंत्रता है। अब अगला शीर्षक है, क्या नैतिक अशुभ के लिए ईश्वर उत्तरदायी है? इस विवाद से यह भी निष्कर्ष निकलता है कि जब मनुष्य आत्मचेतन है और मूल्यों को दृष्टि में रखकर विकल्पों को चुनता है तो शुभ या अशुभ कार्य के लिए मनुष्य ही उत्तरदायी है। प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर पर इसका उत्तरदायित्व नहीं थोपा जा सकता। संभावनाओं के आधार पर मनुष्य अपनी इच्छा से नैतिक अशुभ को वास्तविकता प्रदान कर सकता है। यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि बहुत से नैतिक अशुभ प्राकृतिक अशुभ के कारण भी उत्पन्न होते हैं, फिर मनुष्य इसके लिए कैसे जिम्मेदार कहा जा सकता है? पृष्ठ संख्या 233। इस प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि निश्चित ही यह सृष्टि ईश्वर की है और ईश्वर ने प्राकृतिक अशुभ को यदि उत्पन्न किया है तो मनुष्य में स्वतंत्र इच्छा शक्ति भी तो पैदा की है। मनुष्य यदि चाहे तो इस शक्ति के आधार पर शुभ कर्मों को ही चुन सकता है। अतः ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक अशुभ के लिए उत्तरदायी कहा जा सकता है, परंतु नैतिक अशुभ के लिए वह उत्तरदायी नहीं है। अगला शीर्षक है, ईश्वर तंत्रता एवं संकल्प स्वतंत्रता। उपर्युक्त विवेचन से यह भी प्रकट होता है कि मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा शक्ति में ईश्वर का हाथ है। धर्म की दृष्टि से यह कहा जाता है कि यह विश्व ईश्वर द्वारा ही रचा गया है, इसलिए यहाँ का प्रत्येक कार्य और घटनाएं ईश्वर द्वारा ही नियोजित मालूम होती हैं। प्रकृति में ऐसी व्यवस्था, नियमितता और अनुक्रम ईश्वर के कारण ही संभव है। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य अपनी इच्छा से कोई कार्य नहीं करता। ईश्वर को पूर्व ज्ञान है, वह मनुष्य के कार्यों का निर्धारण स्वतः करता है। इस प्रकार ईश्वर तंत्रता में ही यह विश्व चल रहा है। परंतु यदि ईश्वर तंत्रता का यही अर्थ लिया जाए कि ईश्वर ही सब कुछ है, उसी का विधान सर्वत्र संचालित हो रहा है तो मनुष्य का कोई महत्व नहीं रह जाता। उसके शुभ अशुभ कर्मों का न तो कोई महत्व होगा और न वह उसके लिए उत्तरदायी ही होगा। सचमुच यह एक बहुत बड़ी कठिनाई है। परंतु इससे बचने के लिए धर्म में यह भी स्वीकार किया गया है कि संपूर्ण विश्व ईश्वर की ही रचना है और मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। ईश्वर ने मनुष्य के स्वतंत्र संकल्प शक्ति प्रदान की है, उसके अंदर विवेक है, वह आत्म चैतन्य है, उसे शुभ अशुभ का ज्ञान है, इसलिए वह अपने कर्मों का निर्णय स्वयं कर सकता है। मनुष्य केवल हाड़ मांस का पुतला ही नहीं है, बल्कि स्वतंत्र संकल्प शक्ति के कारण उसके भीतर अनंत संभावनाएं अंतर्निहित हैं। उनसे वह अपना आत्म विकास कर सकता है। उसके अंदर ईश्वर ने इतनी क्षमता दी है कि वह अपने शुभ तथा अशुभ उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। इस अर्थ में ईश्वर तंत्रता संकल्प स्वतंत्रता की विरोधी नहीं है। संकल्प स्वतंत्रता ईश्वर की ही दी हुई शक्ति है। ईश्वर ही सृष्टि का सर्वस्व है, अतः ईश्वर तंत्रता सार्थक है। इसके अतिरिक्त संकल्प की स्वतंत्रता अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य इसके आधार पर अपने जीवन का निर्माण, विकास और उन्नयन कर सकता है। इसमें ईश्वर बाधक नहीं है।